नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी गोविंदपुर वासी हरे कृष्ण भक्त समाज, मुझे सूचना प्राप्त मिला कि ये गोविंदपुर कम्युनिकेशन के आप लोग के इस वर्ष का भगवद गीता मैराथन का सफलता के उपलक्ष्य में ये आपके वार्षिक उत्सव, जिसको आपने आनंद उत्सव रूप में नाम दिया है, तो जैसे प्रभु जी ने बता रहे थे आनंद के बारे में, कई प्रकार से आप आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन उत्सव से आनंद प्राप्त तो सभी करते हैं। तो आनंद उत्सव आपने कर रहे हैं, तो मुझे विशेष करके इस आनंद उत्सव में इसलिए बुलाया गया कि श्रीमद् भगवद गीता किस आधुनिक युग में उसकी क्या उपयोगिता है। आप सभी जानते हैं भगवद गीता तो महाभारत युद्ध में, कुरुक्षेत्र में, द्वापर युग में कहा गया है। केवल ऐसा नहीं, गीता में यह भी तो कहा गया है कि ये भगवद गीता केवल द्वापर में नहीं, उसके पहले सत्य युग में सूर्य भगवान को भी कहा गया। तो इतने पुराना, इतने प्राचीन ज्ञान का आज के इस आधुनिक युग में, विशेष करके मेट्रो सिटी में कोई आवश्यकता है क्या? तो विचार करके देखने से पता चलता है कि ज्ञान का कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि जब सत्य युग में लोग थे वो तो भोजन करते थे ना, त्रेता में भी भोजन करते थे, द्वापर में भी खाते थे, कलि में भी खाते हैं, आगामी जितने युग आए समय खाएंगे। ऐसा होगा कि कई युग में नहीं, ये तो पुराना जमाने में खाते थे, आजकल खाएंगे थोड़ी। खाना पीना तो सब पहले जमाने का था, आजकल खाना पीना थोड़ी, ऐसे नहीं हो सकता। जब तक शरीर है, आत्मा है, जब तक देह है और देही है, देह और देही के लिए जो आवश्यक वस्तु उसको चाहिए, देह की भरण पोषण के लिए भोजन चाहिए, देही की भरण पोषण के लिए ज्ञान चाहिए। जैसे भोजन कभी पुराना नहीं होता कि नहीं, पुराना जमाना में उस जमाने में भोजन करते थे, हम आजकल आधुनिक लोग भोजन नहीं करते, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो ज्ञान है कभी पुराना नहीं होता। कितने भी समय बदल जाए, ये हमेशा आवश्यकता है। जैसे मैं कहा कि दो प्रकार के भोजन की आवश्यकता है, एक देह के लिए एक दही के लिए, एक शरीर के लिए एक आत्मा के लिए। तो दोनों ही भोजन हर युग में हर समय में हर एक परिस्थिति में आवश्यकता है हमको जीवित रखने के लिए। तो उसके लिए कोई स्थान काल पात्र परिस्थिति का प्रभाव नहीं है, हर समय उसका आवश्यकता है। तो श्रीमद् भगवद गीता ऐसे एक अद्भुत ज्ञान के मुकुटमणि है जो केवल भारतवर्ष में नहीं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में हरेक संप्रदाय हरेक संत भक्त महंत उसी को एक मुख से स्वीकार करते हैं कि अद्वितीय है, ये अद्वितीय है ही है, इसमें किसी का भी मत नहीं। बाकी जो हम आजकल के समाज में आपने आपको आधुनिक कह करके बड़े गर्व महसूस करते हैं, किस माने पर आपने आपको आधुनिक कहते हैं, क्या अंतर है पहले से अभी में? इसलिए हम एक तो अतीत था पुरातन है, अभी तो हम आधुनिक है, किस माने में? पहले जमाने में कुरुक्षेत्र युद्ध में भी कृष्णार्जुन जब युद्ध हो रहा था तब भगवान ने जो गाड़ी पर अर्जुन को सवार करके ले जा रहे थे तो फोर हॉर्स पावर का था, फोर एचपी था ना। हाँ, तो अभी भी आप जो गाड़ी चल रहे हैं उसका इंजन में भी हॉर्स पावर में मतलब जाता, कितने एचपी का होता है मुझे पता नहीं, आप लोग को पता होगा आप गाड़ी चला, लेकिन है ही हॉर्स पावर। लेकिन ए हॉर्स में पॉल्यूशन नहीं होता था, लेकिन ए हॉर्स पावर में पॉल्यूशन होता है और दिल्ली वासियों को उसका अभिज्ञता खूब है। ये आधुनिकता का परिचय है। आप बोलते हैं नहीं, तभी तो आज ऐसे लोग थे, जंगल था, नदी था, पहाड़ इस प्रकार था, इतने विकास नहीं हुआ था। आजकल जैसे अर्थनैतिक वैज्ञानिक और पारिपार्श्विक इस बाबत में खूब विकास हुआ है, लेकिन इस विकास के दौरान हम देखते हैं कि जितने ज्यादा हम विकसित होते हैं इतने ज्यादा मानसिक संताप भी बढ़ते जा रहे, उसका भी विकास हो रहा, उसका भी घटना नहीं हुआ। जितने हॉस्पिटल जितने डॉक्टर जितने मेडिसिन बढ़ता है रोग कुछ कम नहीं बढ़ते, इसके रफ्तार से वो ही बढ़ते हैं। पहले जमाने में युद्ध हुआ करता था, सम्मुख युद्ध होता था, हाथी घोड़े रथ के ऊपर बैठ करके लोग युद्ध करते थे, कुछ मरते थे। आजकल तो हाथी घोड़े कुछ जरूरत ही नहीं, घर बैठे बैठे आणविक अस्त्र प्रयोग करते हैं, एक साथ में लाखों मरते हैं। ये हमारा एडवांसमेंट है, आधुनिकता है। भौतिक संसार में प्रगति के लिए चलने के लिए जो तीन प्रकार की कुशल साधन है, इसमें मंत्र तंत्र और यंत्र, और तीनों पहले से ही था, ये तीनों भौतिक ज्ञान है, मंत्र ज्ञान तंत्र ज्ञान और यंत्र ज्ञान। वर्तमान युग में ये मंत्र ज्ञान और तंत्र ज्ञान लगभग लोप प्राय हो चुका है, लुप्त प्राय हो चुका है। हम यंत्र ज्ञान में बहुत प्रगति कर चुके हैं, जंत्र से थोड़ा सूक्ष्म होता है तंत्र, तंत्र से और सूक्ष्म होता है मंत्र। आप जानते जितने सूक्ष्म होता है इतने शक्तिशाली होता है, यही तो हमारे वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं। अणु बहुत पावरफुल होता है ना, अणु क्या होता है, उसको और डिवीजन करो, और डिवीजन करो, और छोटा करो, जितने छोटा करेंगे इतने उसका शक्ति और बढ़ता। तो जितने सूक्ष्म होगा इतने उसका शक्ति के विकास होगा। तो मंत्र शक्ति अति सूक्ष्म शक्ति, उससे थोड़ा ग्रस स्थूल रूप में यंत्र तंत्र शक्ति, उससे और स्थूल रूप में यंत्र शक्ति। इसी यंत्र के शक्ति में हम खूब विकास किए हैं। आजकल बड़े बड़े नदी गंगा जमुना आदि में अनेक बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपया खर्च करके नदी बंध योजना डैम बना दिया गया। आधुनिक युग का पहचान, उस पानी को हम उपयोग करते हैं, कैनाल से लेकर कुछ करते हैं। पहले जमाने में इतने टेक्निक नहीं था, नदी के ऊपर इस प्रकार बंध नहीं बना पाते थे। लेकिन हम सुने हैं कि त्रेता युग में और पुराने द्वापर से पहले भी भगवान राम ने समुद्र के ऊपर एक ब्रिज बना दिया, समुद्र के ऊपर। और वो भी कोई लोहे सीमेंट और कंक्रीट इसका नहीं था, पत्थर पत्थर उठा करके बंदर भालुओं को लेकर के बना दिया। कुछ तो कुशलता होगा उनके पास ही, कुछ तो टेक्निक होगा। द्वापर युग में ही महाभारत गीता के समय की बात है, भगवद गीता में भाग लिए थे कौरव पक्ष के सेनाध्यक्ष के रूप में पितामह भीष्म। आपको पता होगा पितामह भीष्म गंगा जी के पुत्र थे, उनका नाम था देवव्रत। देवव्रत ने आपने कुमार अवस्था में, कुमार तो थे ही आजन्म, आपने युवक अवस्था में आपने पिताजी को आश्चर्य डाल दिए थे कि बाण मार करके गंगा जी के धारा को रोक दिए थे, एक ड्रॉप पानी नहीं निकल पाया। आप सुने होंगे जरूर, महाभारत में बात करनी थी। महाराज शांतनु उस अद्भुत कर्म को देख करके आश्चर्य थे, कौन है ये, एक युवक आपने धनुष बाण में गंगा जी के धारा को बिल्कुल रोक दिया। आजकल कितने नदीबंध योजना हुआ है, लेकिन साइड में किनारे डालना पड़ता है, नहीं तो पानी के रोक नहीं समर्थ नहीं। लेकिन उन्होंने अकेले सिंगल हैंडेडली केवल धनुर्बाण के प्रयोग से और रोक दिए। तो इसे अनुमान किया जा सकता है कितने बड़े हाईटेक होंगे, क्या टेक्निक था उनके पास। कोई मशीनरीज, कोई बुलडोजर, कोई आजकल लेकर जाते ना, क्या क्या बोलते हैं सब उसको, कुछ मशीनरी, कोई कंट्रैक्ट ठेकेदार है, बुलडोजर है, कुछ नहीं था ऐसा, नथिंग। केवल वो आपने अकेले धनुर्बाण से कर चुके थे। तो इससे अनुमान किया जा सकता कि उनके टेक्निक हमारा टेक्निक तो उनसे कितने उन्नत होगा, कितने हाईटेक होंगे। लेकिन इसके द्वारा उसका साइड इफेक्ट इतना नहीं हुआ करता था। आजकल हम एक कुछ प्रगति के लिए, आधुनिक युग की प्रगति करने के लिए कोई कुछ काम करते हैं, उसका अनेक साइड इफेक्ट होता है, अनेक। कुछ भी एक बनाने के लिए कईयों को मिटाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। बड़ी बड़ी हाईवे बनाते हैं, 6 लेन 8 लेन और बड़े बड़े शिल्प आधुनिक उद्योग बनाते हैं, इसमें जिस खेती से अनाज उत्पन्न होता था उस अनाज वाले खेती के ऊपर तो रोड बनाए और बाकी के ऊपर प्रकल्प बनाए और उसके आसपास में उनको क्वार्टर्स डेवलपमेंट किए। तो ये सब में जो जो उद्योग से जो इंडस्ट्री से जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो तो प्रोडक्ट से क्या हमारा देह का आवश्यकता पूरा होगा? देह को जो आवश्यक भोजन चाहिए कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हो सकता है, कोई शिल्प से हो सकता है? वो तो नट बोल्ट मिलेगा, नट बोल्ट खा करके कोई ब्रेकफास्ट ना लंच को कर सकता नहीं। जिस चीज से देह की भरण पोषण होगा वो तो कोई शिल्प नहीं दे सकता। अनाज पैदा कौन करेगा? तो हमारे आधुनिकीकरण है ये, तो जो भी हो इस यंत्र के द्वारा हम खूब प्रगति कर चुके हैं और सूक्ष्मता से इतने को जा चुके हैं कि दूर से घर में बैठ करके दूर की चीज को देख लेते हैं, दूरदर्शन कहते हैं उसको, है ना, टेलीविजन, वायरलेस फोन भी, सेलफोन आदि सब करते हैं। लेकिन सेल तो लगाना पड़ता है ना। इसी भगवत गीता में हम देखते हैं, भगवत गीता जो कि कृष्ण अर्जुन संवाद था, लेकिन कृष्ण तो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान पर बताया, लेकिन हम जो गीता को पढ़ते हैं वो तो संजय और धृतराष्ट्र के संवाद है ना। नहीं, अब गीता पढ़ेंगे ना, भगवत गीता के सबसे प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक का वक्ता कौन थे? धृतराष्ट्र। उन्होंने पूछे, सबसे पहले उसने धर्म क्षेत्रे गुरु क्षेत्रे समवेता, उनका जिज्ञासा था, संजय को जिज्ञासा कर रहे थे, उनके सचिव थे। महाभारत से पता चलता है ये भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं जो धृतराष्ट्र और संजय के संवाद है, जो भगवत गीता कुरुक्षेत्र में बोला गया था 18 दिन के युद्ध का 10वां दिन ये बताया गया 10th डे में भगवत गीता धृतराष्ट्र ने संजय को पूछे थे। जद्यपि गीता तो युद्ध की शुरुआत में कहा गया, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, है ना, विषाद में थे, दुखी थे, लड़ा नहीं करना चाहते, तब उनको कृष्ण समझाए। लेकिन ये धृतराष्ट्र का पास 10 दिन के बाद, धृतराष्ट्र बैठे थे हस्तिनापुर में, दिल्ली में अपने राजभवन में, संजय उनके सचिव थे कुरुक्षेत्र में, वो भी युद्ध में भाग लिए। जब पितामह भीष्म पतन हुआ, सरसज्जा में रह गए, तो उस दिन उसी समय से दोपहर में युद्ध विराम हो गया, दोनों पक्ष के सारे सेनाएं हाथ उठा दिए। पितामह भीष्म का ऐसे गति, युद्ध बंद कर दिया गया उनके सम्मान के लिए। तो ऐसे दशा को देख करके संजय जो राजा धृतराष्ट्र के सचिव थे वो द्रुतगामी अश्व में आ गए ये संवाद देने के लिए। आगे पहुंच कर बोले, महाराज पितामह पतित हो गए। पितामह का भीष्म आप जानते हैं, जिनको वरदान था इच्छा मृत्यु का, इच्छा नहीं करेंगे तो मर ही नहीं सकते, कोई मार नहीं सकता, उनका कैसे पतन हुआ मृत्यु, अजय वीर थे, अकेले जो गंगा को धारा पर रुक सकते हैं, ऐसे महावीर को कैसे। तो ये बात सुन करके धृतराष्ट्र के मन में बहुत बड़े जिज्ञासा हुआ। उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए उन्होंने बड़े उत्सुकता से पूछे अपने सचिव संजय को, संजय मुझे केवल पितामह के बाद में शुरू से बताओ, मुझे बिगनिंग से बताओ अब तक क्या क्या हुआ। जब से मेरे बेटे मामका और पांडव, पांडु के बेटे और मेरे के बेटे गए धर्म क्षेत्र में लड़ाई करने गए, अभी क्या क्या हुआ डिटेल मुझे बताओ, कैसे इसे घटना कि अपूर्वता यहां अतीत क्रिया लगा गया, अपूर्वता दुर्गत नहीं कि अपूर्वता समझे, क्या क्या किए मुझे बताओ। तो घटना घटित हो चुका था, तो संजय ने उनको बताया। आप गीता में देखते हैं संजय ने धृतराष्ट्र को जिस प्रकार कथा कह रहे हैं, आजकल के दूरदर्शन भी उसके समान नहीं कर सकता कि दूरदर्शन में टीवी में जो आप देखते हैं चैनल से कोई दूर जगह का चित्र देखते हैं और शब्द सुनते हैं, ये निश्चित है। एक एक फील्ड में जो क्रिकेट मैच देखते हैं उसके हरी घास भी दिखाई पड़ता है, बॉलर बैट्समैन सब कुछ डिटेल देखते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन कौन क्या सोचते हैं आप जान पाते हैं नहीं। लेकिन गीता में आप देखिए संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है, यहां तक दुर्योधन क्या सोच रहा है, द्रोणाचार्य क्या सोच रहे हैं, पितामह क्या सोच रहे हैं, ये उनका मन के भाव ही व्यक्त कर देता। कितना हाईटेक टीवी है, अभी तक एक्स्ट्रा टीवी तो ऐसा टीवी तो अभी बना ही नहीं ताकि केवल चित्र शब्द और मन की बात को बुद्धि तक व्यक्त कर दे, लेकिन तभी जमाने में ये गीता की प्रमाण है। तो हम कैसे कहते हैं, कह सकते हैं कि आप लोग को हम आधुनिक है वो अतीत है। जो तथाकथित रूप में हमने आपने आपको अभी मैं देख रहा हूं रहन पहन में कम से कम सब आधुनिक वेशभूषा में है, इस मायने में आधुनिक सब सूट शर्ट टाई आदि पहनते हैं, ठीक है, ये हमारे पूर्वजों का पहनाव नहीं था, ये तो आप सभी मानते हैं क्योंकि तभी जमाने में टेलर तो थे नहीं, सिलाई कैसे करेंगे, टेलर थे नहीं, इसलिए आजकल शास्त्र में भी शुद्ध वस्त्र इसी को माना जाता है जिसमें सिलाई नहीं हुआ, वस्त्र में सिलाई होने से अशुद्ध हो जाता ना। इसलिए कोई पूजा आदि में बैठते हैं बोलते हैं नहीं सिलाई किया वस्त्र उतार दो, कुर्ता उतार उतरी डालो, क्योंकि वस्त्र में स्टिचिंग होने से अशुद्धता है। तो कभी शुद्धता हम अपने आप को अशुद्ध करके मानते हैं वी आर मरना, और हम अपने आप को अपवित्र और अशुद्ध कर चुके हैं। ऐसे ऐसे आधुनिक वेशभूषा पहनते हैं, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते होंगे, आज से 20-25 साल पहले जब हम देखे थे कि आधुनिक पोशाक के बारे में, तभी लड़के पहनते थे एक आधुनिक वेश कहते हैं, एक पैंट पहनते थे जिसका नीचे चौड़ा होता था, ऊपर से थोड़ा न्यारा होता था, नीचे इसे चौड़ा होता था, आप याद है किसी को पुराने, उसका नाम कहते थे तभी जो हमें बेल बटन याद है किसी, ऐसा था ना, उसी को मॉडर्न ड्रेस माना, ऐसे ऐसे इतने बड़ा होता था, इतने लंबा लंबा करते थे, पता नहीं किंबा तो किंबा कर देता था लेकिन फिर भी इसी हाई स्टाइल था। धीरे धीरे पता नहीं ये कमती होने लगा,
ये 75 और ही चौड़ा हो गया, टफ से बटन को आ गया दोस्त, बटन से टफ को आ गया।
अरे फिर भी तो ठीक था, कम से कम वस्त्र धारण करके रखते थे। उस दिन के बाद आधुनिकीकरण पोशाक में मैंने देखा अब ये सब कपड़ा नहीं, जीन। जीन है क्या? मुझे तो समझ नहीं आता, मैं टेक्सटाइल बारे में जितना जानता, लेकिन मुझे एक ने समझे टार्पोलिन तो है, टार्पोलिन है जो टेंट हाउस में यूज करते हैं, ऐसे ही कुछ मैटर है वो, इतने मोटे होता है, आधा इंच के मोटे, जो जितने मोटे बोलेंगे जितने आधुनिक है, इसी को पहनते हैं। हम जानते हैं वस्त्र प्रतिदिन शुद्धता को बरताने के लिए धुला हुआ वस्त्र पहनना होता है, और हम ऐसे आधुनिक वस्त्र जीन पहनते ही इतने मोटा, जिनको धोने के लिए तो सोचना पड़ेगा कि दो चार बकेट पानी में तो होगा ही नहीं, आजकल पानी की जितना समस्या है कैसे धोएं, धोएं तो कौन, तो हमारा शक्ति नहीं इसको निचोड़े, सूखेगा कितना दिन लगेगा सुखाने के, तो दो चार महीने पहनते रहे कौन धोए उसको, अगर कुछ धोना की जरूरत पड़ा, बोलते हैं कि आजकल आधुनिक जो ड्राई क्लीनिंग, लो पानी डालेंगे कैसे शुद्धता हो सकता है, ये आपका आधुनिक तरह। अरे ये तो फिर भी ठीक था, शरीर को ढाके थे, लेकिन आजकल हमको देखने में शर्म आता है, जब हम बाहर जाते हैं लोग युवक युवती पहनते हैं ऐसे जीन तो पहनते हैं, बोरा तारपोलिन ऐसे कुछ ड्रेस, लेकिन उसमें यहां से फटा हुआ है, यहां फटा हुआ है, धागा निकलता रहता है, पता नहीं यार ऐसे फटा हुआ धागा निकलता, उसको बोलते हैं ये मॉडर्न स्टाइल, ये सबसे आधुनिक वेश पोशाक है, लगता है धीरे धीरे पर सब निकाल देंगे और पशुओं के साथ कंपटीशन करेंगे, आप नहीं पहन धागे नहीं पहने, ये हमारे मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण, हम इतने तरक्की करेंगे जब तक पशु नहीं बन जाए छोड़ेंगे नहीं, हाँ यहां तक तो जाएंगे। देखिए चाहे आप इस प्रकार के आधुनिकीकरण खान पान में, वेश पोशाक में, व्यवहार में कुछ भी कर ले, आप व्यक्ति है, आपके शरीर है, और आपके शरीर के अंदर आपके आत्मा है, ये था है और रहेगा, उसको तो कुछ बदला नहीं सकते हैं। हम आधुनिक हो गए, हमारा हाथ यहां नहीं रहना, नीचे चला जाएगा, पैर ऊपर आ जाएगा, करंट फंसी हो, सर इधर था भी थोड़ा नीचे कंधे के ऊपर आ जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। जो डिजाइन, जो सेटअप सृष्टिकर्ता ने करके दिया है मनुष्य शरीर के लिए, तो ही सेटअप है, आप उसको गड़बड़ करना चाहेंगे प्रैक्टिस कर, आपको दूसरे सेटअप में डाल दिया जाएगा। 84 लाख प्रकार के डिजाइन के शरीर है, जो डिजाइन पसंद आपको ही डिजाइन दिया जाएगा, हाँ? तो लेकिन जो मनुष्य शरीर है ये केवल आज का नहीं है, मनुष्य शरीर कोई आधुनिक शरीर नहीं, हमारा विज्ञान भले कहता है कि मनुष्य शरीर बहुत आधुनिक है, तो फिर इतिहास पुरातन शरीर कौन है ना, बंदर है, विज्ञान ही कहता ना, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र ये नहीं कहते हैं कि हमारे पूर्वजों बंदर, ऐसा नहीं कहते, हाँ हमारे पूर्वजों को साध क्रिया करते हैं और मानते हैं। परीक्षित महाराज ने अपने पूर्वजों को कितनी बड़ी प्रशंसा करते थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अर्जुन आदि उनके पूर्वज थे, उनके पूर्वज और कितने पूर्वज थे, पितामह भीष्म कितने बड़े ज्ञानी ध्यानी योग्य थे, हम कैसे कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर हो सकते हैं, अगर पूर्वज बंदर थे हम आधुनिकीकरण डेवलप होते होते मनुष्य बन गए, आजकल फिर बंदर कैसे रहते हैं, वो डेवलप नहीं हो रहे। तो इस प्रकार के आप लोग जानते हैं इस प्रकार से तथाकथित वैज्ञानिक सिद्धांत है, कई बार उसका चैलेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनके पास सही ज्ञान के अभाव है, सब अनुमानिक स्तर पर चले। जितने वैज्ञानिक सिद्धांत अब तक हुआ है सभी के शुरुआत सपोज से शुरू होता है। कैसे? मान लो, सपोज। अरे व्हाट इज सपोज? इसमें क्या ठोस है? लेकिन हमारे वैदिक ज्ञान तो बिल्कुल ठोस है, एक चीज ऊपर नीचे नहीं है। जो इंफॉर्मेशन वैदिक ज्ञान से प्राप्त होता है कोई एक ऊपर नीचे नहीं हो सकता। जड़जा नवलख्याणी, ये मानवल गाइड सृष्टि करता ने जब सृष्टि बनाया तभी से ये मानवल गाइड में दिया, में बनाया, इसमें इतने वैरायटी के इस प्रकार के जल में रहने वाले 9,00,000 प्रकार के प्राणी बनाया। आप और हम अगर गिनती करें पानी में जा करके 10-20 प्रकार से ज्यादा तो जान नहीं सकते, अब तक जाने भी नहीं। लेकिन जिन्होंने बनाया उन्होंने एक ज्यादा एक कम है बिल्कुल गजट करके कहा 9,00,000 प्रकार के जलचर प्राणी है। स्थावरा मुख्य विंशति, 20,00,000 प्रकार के पेड़ पौधा लता पता है। हम लोग तो कोई गिन भी नहीं सकते, कोई वैज्ञानिक गिन भी नहीं सकता, लेकिन गिनेगा क्या? पहले से लिखा हुआ जो बनाने वाला उनका रिपोर्ट है, मैन्युफैक्चरर्स रिपोर्ट, उसमें गलती कैसे हो सकता? वो मैन्युफैक्चर की पूरे गिनती करके दिया लक्षण। तो इस सृष्टि के जितने प्रकार के जीव जंतु है, जलचर, स्थलचर, नवचर और रेंगने वाले प्राणी आदि सब मिलकर के मनुष्य आदि के सभी के डिटेल ज्ञान शास्त्र में है। तो इसीलिए जो शास्त्र ज्ञान वो कभी पुराना हो नहीं सकता। जैसे मैं बोला भोजन करना कोई पुराना नहीं है, भोजन पुराना हो सकता है लेकिन भूख लगना कभी पुराना नहीं होता। ये तो करना ही है। तो इस प्रकार ज्ञान है, जब तक शरीर रहेगा तब तक भोजन की आवश्यकता पड़ेगा, जब तक शरीर के अंदर शरीर ही रहेगा, जीव रहेगा, तब तक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगा। जैसे भोजन के बिना शरीर असमर्थ है, भोजन के बिना शरीर चलेगा नहीं कर सकता, ठीक इसी प्रकार ज्ञान के बिना जीवात्मा ही दशा। इसलिए शास्त्र में कहा गया कि नाना प्रकार के जो दुख है सारे दुख के मूल कारण एक ही है, अज्ञान। अज्ञानता ही समस्त प्रकार दुख के कारण है। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग, यही और कुछ नहीं। तो जब अज्ञानता की समस्त दुख और सोचना के कारण है तो हम आधुनिक में कितने तरक्की कर ले, खैर हम तो केवल ये जो शरीर है जीवात्मा का क्या है ये? जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, सभी गाड़ी चलाते हैं फोर व्हीलर, जब गाड़ी में बैठते हैं तो आप गाड़ी हो जाते हैं क्या? नहीं, आपका गाड़ी है, आप गाड़ी के गाड़ी में सवार करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की गाड़ी में, शरीर एक जान इस गाड़ी में बैठता है, यंत्र रूढ़ानी माया। तो एक कवर है, तो एक कवर को टेक केयर करना ठीक है, कवर बड़े अट्रैक्टिव, उसको टेक केयर करो, लेकिन कवर के अंदर जो वस्तु है उसके वजह से कवर का महत्व है। अगर वस्तु ना हो केवल कवर हो तो उसको महत्व देंगे आपने? आजकल हाईटेक आईफोन आईफोन 7 ना ऊपर में और ऊपर में आ गया 7 शायद पता नहीं जो भी, और उसका इतने कीमत 60-70 हजार आप गए पसंद के खरीदे तो दुकानदार आपको सलील पैक बहुत अट्रैक्टिव पैक करके दे दिया और लेकर आया, दो दिन तक तो खोले ही नहीं, इतने खुश है इतना बढ़िया पैक में लेकर आया, दो दिन मैंने बाद में सारे दोस्तों के बीच में खोले नहीं लेकर आया इतने कीमत, अरे अंदर केवल डब्बा कुछ है ही नहीं, खोली नहीं, केवल कवर था पैकेट, तो कैसे लगेगा? दौड़कर जाकर उनके सामने झगड़ा करेंगे? अरे क्या, क्योंकि एक कवर का महत्व तो तभी होता है कि वस्तु की वजह से, वस्तु ही नहीं तो कवर किसी लिए। तो इस प्रकार हमारे जितने सारे हम बैठे हैं ये तो सारे कवर है, कवर के अंदर जो वस्तु जो जीवात्मा है उसके बारे में हमारा अभी तक ज्ञान नहीं। ये आधुनिक जितने प्रगति हम किए हैं ये हरेक प्रकार के टेक्निक तरक्की सब कवर के ऊपर किया गया, सोफिस्टिकेटेड कवर, तो अंदर जो मैटर जो वस्तु है वो भूल ही गए, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो ये भगवत गीता जो है वो उसके लिए है, जो वस्तु उसका अंदर है उसके जानकारी हमको देता है, ये जीव क्या है, उनके नेचर क्या है, उसका आवश्यकता क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसके कर्म क्या है और किसी लिए है, ये सब चीज का जानकारी उससे प्राप्त होता। जैसे आजकल हम जितने यहां बैठे हैं सभी को मेडिसिन के बारे में तो सब अच्छी तरह से जानते हैं, शरीर माध्यम इस इदम शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर जो है इसमें व्याधि तो विराजमान है हर प्रकार से, अब पैर से लेकर सर पर्यंत हर प्रकार से बीमारी है, तो मेडिसिन का पहचान सबको है, तो कोई भी मेडिसिन चाहे लिक्विड या सलिड या टैबलेट या कैप्सूल कुछ भी हो, हर एक मेडिसिन के पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि क्या बोल रहा था कैसे हाउ टू यूज इट है ना, नहीं डायरेक्शन किस प्रकार उसको लेना होता है डॉक्टर के परामर्श में, या सुबह दो शाम को दो क्या इसे लिखा रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं यूजर पैटर्न समथिंग, मैंने नोट लिखा रहता और उसको कोई भी लाता है तो उसको पहले पढ़ते हैं ध्यान से, पहले देख लो सुबह लो कि शाम लो कितने डोज लो क्या लो, बिना देखे पी तो कोई नहीं जाएंगे खाने जाएंगे, पहले देखते हैं कई बार देखते हैं बड़े ध्यान देकर चश्मा लगा कर देखते हैं, कई लोग चश्मा निकाल कर देखते हैं, कई चश्मा लगा कर देखते हैं, लेकिन देखना पड़ता है क्योंकि वो मुझे ठीक करेगा उसको सही प्रकार से मैं ग्रहण करूंगा। ठीक इसी प्रकार कोई बीमार के लिए जो दवाई निर्धारित किया गया उसके ऊपर जो मानुअल लिखा गया किस प्रकार उसको सेवन करना चाहिए, सेवन विधि जो लिखा गया है, ठीक इसी प्रकार इस भौतिक संसार को जिन्हें बनाया सृष्टिकर्ता ने, इस भौतिक संसार को बना करके हम को इस संसार में संसारिक प्राणी के रूप में भेजा, तो उन्होंने बिना मानवाद में नहीं भेजा, उन्होंने भी इस संसार में किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार वार्ताव करना चाहिए, किस लिए रहना चाहिए, ये सारे यूजर गाइड को लिख करके दिया है तो बाद में नहीं, उसी समय से जब तक मेडिसिन मैन्युफैक्चर तभी से उसके साथ प्रिंट होकर आता है सेम टाइम। सृष्टिकर्ता ने तभी से उसको दिया है। तो इसीलिए इस वैदिक शास्त्र का दूसरे नाम है अपौरुषेय ज्ञान। किसी पुरुष ने उसको नहीं लिखा, कोई मनुष्य कृत नहीं है, साक्षात विधाता कृत है। उन पुरुष के दिया गया है जिन पुरुष ने उसको बनाया, हमको बनाया है, जगत को बनाया, उन्होंने बता मैं इसको बनाया, तुझे बनाया, तुझे मैं भेज रहा हूं भाई, मैं क्यों भेज रहा हूं, क्या काम के लिए, तुझे कैसे व्यवहार वार्ता किस प्रकार रहन सहन करना होगा, ये सारे सेवन विधि यूजर गाइड रहन सहन विधि देखा। वही जो विधि के जानकारी ये श्रीमद् भागवत गीता, ये मनुष्य समाज के यूजर गाइड है, संपूर्ण मानवता के लिए सृष्टि से आरंभ से लेकर के अंत तक हमेशा आवश्यकता है। उसके बिना तो हम जीवन जी नहीं सकते। अगर उसके बिना कोई जीते हैं, ईश्वर विहीन जो सभ्यता, ईश्वर विहीन जो जीवन है, वो तो केवल ढक्कन के है, वस्तु के नहीं, केवल बाहर। आजकल आधुनिक जगत में बहुत प्रगति हम लोग किए हैं ईश्वर को छोड़ करके, ईश्वर विहीन समाज बनते चला जा रहा है, हर क्षेत्र में उसी को छोड़ करके हम जाते हैं, और जिसके परिणाम आजकल हम देखते हैं किस प्रकार से, अब सभी को पता है किस प्रकार परिणाम होता है। तो केवल किसी व्यवस्था में हम लोग अगर अपना जीवन को इस भगवत गीता के आधार पर जीने के लिए प्रयास करें, तो ये मैं नहीं कहता हूं, ये परीक्षित है। ये जो जो कर चुके हैं उनके अनुभव है, उनका विज्ञता है। आप भी अगर करना चाहें आप भी करके देखेंगे, और करके मुझे फिर फोन करके पूछेंगे मैं तो किया हुआ नहीं, फोन करना आवश्यक नहीं पड़ेगा। आप आज से नक्की कीजिए, मैं आज के शाम से, आज रात से मैं भगवत गीता लूंगा, और यथाशक्ति जितने समझ में आए उनके आधार पर जीने के लिए प्रयास करूंगा। आप दो महीना के बाद में और भी जल्दी, अब किसी पूछना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं को स्वयं अनुभव करेंगे। जैसे आप स्वयं भोजन करते हैं, आप जितने यहां उपस्थित हैं सब तो खाना खाते हैं ना, टू टाइमर थ्री टाइमर कोई और भी ज्यादा, दो तीन बार तो खाते होंगे जरूर, लेकिन किसी भी बार आप जब खाते हैं, चाहे माताजी हो चाहे पिताजी हो, किसी भी साथ खाते के साथ बगल में बैठे हुए कोई आदमी पूछते हैं भाई साहब और खाऊं क्या, मेरा पेट भरा कि नहीं बताओ, तुम किसी पूछे कभी अभी तक इतिहास से, अभी तक कोई किसी ने पूछा नहीं, बल्कि जो परिवेशन का नहीं नहीं और अरे और एक ले लो, नहीं और एक तो बड़े गरम गरम है, नहीं नहीं बता। जैसे आपने आपको अनुभूति होता है, किसी को पूछना जरूरत नहीं है, ठीक इसी प्रकार ये ज्ञान की खुराक ऐसा है, उसको सेवन करेंगे, इस प्रकार खुराक आप स्वयं अनुभव करेंगे ना, हो गया पहले जो भूखा था अब वो नहीं है, अब भूख मिट चुका है मेरा, अब तो मैं अलग हूं, अब ऐसा नहीं हूं। आपका विचार, आपके बुद्धि, आपके रहन सहन व्यवहार सब कुछ बदल जाएगा, आप वही रहेंगे लेकिन सब स्वभाव धर्म आदि बदल जाएगा। ये महाप्रभावशाली जो अति चिन्मय ग्रंथ है, ये ग्रंथ नहीं वो ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं दिव्य ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान है। कृष्ण आदि भगवान है, अनादिर आदिर गोविंदम, उनके द्वारा गाया हुआ ये गीत, उनके द्वारा दिया हुआ ये गीत संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए, वो किसी स्थान काल पात्र परिस्थिति के लिए नहीं, सभी के लिए, सभी समय सभी स्थिति में आवश्यकता है, सभी स्थिति में हम शरीर है, सभी स्थिति में हम आत्मा है, तो इसीलिए सभी समय में हमको आवश्यकता है, सभी समय में आवश्यकता है, दुख में सुख में किसी भी अवस्था में उसका आवश्यकता, इसी का आवश्यकता। जब भगवद गीता का शुरुआत हुआ, अर्जुन से विषाद, अर्जुन विषादग्रस्त थे, इतने विषादग्रस्त थे कि जिन्होंने वर्षों तक तैयारी किए थे लड़ाई का, स्वर्गपुरी जाकर के देव दिव्य अस्त्र इकट्ठा करके लाए थे, कहां कहां जाकर के लड़ाई की तैयारी किए थे, क्या उनको अर्जुन को पता नहीं था मैं किसके साथ लड़ूंगा? नहीं पता था क्या कि मेरे सामने यही लोग खड़े होंगे? दुर्योधन का आर्मी में एक कर्ण, दुर्योधन, क्या उनके भीष्म, द्रोण, कृपा, ये सब नहीं आएंगे, पता नहीं था क्या उनको? अच्छी तरह से पता था कि इनके साथ लड़ना है, अच्छा इसी के हिसाब से तैयारी भी किया था, वो ऐसा नहीं कि दो चार दिन, वर्षों से तैयारी किए थे लड़ाई का दोनों तरफ से। तो आज हो क्या गया, और जब आए दोनों सैनिक इकट्ठा भी हुए कुरुक्षेत्र में, सामना सामने हो गए, एक दूसरे को देख लिए, जब घर से मार्चिंग करके चले तभी पता चला था दोनों एक साथ में थे, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ दूर थोड़ी, ज्यादा थोड़ी, क्या पता था, एक ही परिवार के तो थे सब, पता यहां से गए, यहां फील्ड चुने, वहां पर लड़े जाकर, वहां मैदान पर सामना सामने मोर्चा बनाकर खड़े हुए, अपने अपने पोजीशन पर खड़े होकर के सायरन बजा, शंख बज गया, शंख बज गया, अब रेडी मार्च सन, जब शंख सायरन बज चुका है, अर्जुन तो सबसे पहले ताम तोड़ से आकर के जवाब दिए अपने ड्राइवर को, क्या बोले, सेनयर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमं, हे अच्युत, दोनों सेनाओं को बीच में गाड़ी पार करो लेकर, यस, क्यों रे भाई, ये सब हाथ हथियार बिल्कुल गन पॉइंट में खड़े हैं, दूसरा कोई रेंटेड ड्राइवर होगा बोलेगा मैं बोलूंगा क्या, अब कोई गाड़ी आए तू तो बैठा है, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं स्टेयरिंग पकड़ा हूं, मैं कैसे जाऊं भाई बीच में, ये सब गन पॉइंट पर खड़े हैं। लेकिन अर्जुन के ड्राइवर ऐसे कैसे नहीं, ऐसे ओबीडियंट ड्राइवर थे, ऐसा बिल्कुल दोनों सेनाओं के बीच में निडर होकर के ड्राइवर ले गए गाड़ी को, ऐसे जागा में लेकर गाड़ी पार्किंग किए, उनके रथ चलाने को देख करके विपक्ष शत्रु पक्ष के सेना बंदूक पकड़े पकड़े खड़े रह गए देखते देखते, कितने साहस, सायरन बज चुका के बाद में ऐसे आ रहा है, चलते आ रहा है, और आकर के कहां पार्किंग किया ना, भीष्म द्रोण प्रमुखतः इन फ्रंट ऑफ भीष्म और द्रोण के गाड़ी के सामने ही पार्क किए, पार करके बोले अर्जुन देखो ये है लड़ना उनके साथ, वही तो मेन आर्मी थे, प्रधान सेनाध्यक्ष उपसेनाध्यक्ष थे, उन्हीं के सामने गाड़ी रख दी, देखो अर्जुन ने उनको बोला था भाई क्यों बीच में लू ना, मैं देखूंगा, मैं तो अरे गरे योद्धा नहीं हूं, मैं लड़ूंगा तो मेरे लाइफ योद्धा से लड़ूंगा, मेरे लाइफ योद्धा देखने बीच में ले जाओ, मैं देखूंगा किसके साथ लड़ू, साधारण लड़ाई वालों के साथ मैं नहीं लड़ूंगा, तो लेकर के मेजर के सामने, मेजर जनरल के सामने खड़ा करते लो दे, अरे बाप रे बाप, यहां गाड़ी पार्किंग करते ही अर्जुन को टेम्परेचर आ रहा है, पता नहीं, दिसंबर का महीना तो था, थोड़ा ठंडी तो होगा हाँ, और एकादशी भी दिन था, फास्टिंग भी किए होंगे तो, लेकिन फास्टिंग किए होंगे तो जूस फूस तो पिए होंगे। इतने जोश से बोले, अरे यहां से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, आधा किलोमीटर में इतने फेल हो गए, कम कम भी मचा हूं, इतने हाई टेम्परेचर बढ़ गया। अर्जुन स्वयं कहते त्वक्षैव परिदह्यते गांडीवं संस्रते हस्ता त्वक्षैव परिदह्यते, ये धनुष मेरा गन मेरा हाथ से निकल जा रहा, राइफल को टिकता नहीं, पकड़ नहीं सकता। हाई त्वक मतलब चरमा, परिदह्य मतलब जलन होता है मेरे शरीर में, इतने हाई टेम्परेचर आ चुका है, मैं गन नहीं पकड़ सकता, धनुष पकड़ नहीं सकता। शोक संविग्न मानस, रथ में दोनों हाथ अपने सर में दे करके बैठ गए, होगा नहीं मेरे से, मैं नहीं लड़ू। अब बताओ, अब वो तो फास्ट एड बॉक्स नहीं लिए होंगे, पता नहीं के लिए होंगे, अब इमीडिएट मेजर जनरल की ये हाल हो गया कि हाई टेम्परेचर आ गया, क्या थर थर कंप रहा है, हाथ से धनुष बंदूक गिर जा रहा है, अस्त्र गिर जा रहा है। अब कोई असिस्टेंट तो थे नहीं, ड्राइवर एक ही थे, लेकिन ना तो कोई ट्रिप चढ़ाया गया, ना तो कोई इंजेक्शन, ना तो कोई कैप्सूल, ना टैबलेट, ना लिक्विड, नथिंग, टच भी नहीं किया कृष्ण, एक हाथ में स्टीयरिंग पकड़े हुए, मतलब घोड़े के लगाम एक हाथ में पकड़े हुए थे, पीछे मुड़े देख करके आधे घंटे के कुछ बात बोले, आधे घंटा में ये बात का इतने पवार था, इतना हाइडोस था। अर्जुन उठ करके बिल्कुल कमर कस कर खड़ा हुआ, गांडी उठा करके लड़ूंगा, करिष्ये वचनंतर, टेल मी व्हाट टू डू। अभी तक जितना हाईटेक दवाई निकला, बिना टच किए ना जीवा में ना सर में, एक्सटर्नली इंटरनली ऐसा काम कर सकता, ये है भगवद्गीता, सो पावरफुल। उसको इंटरनली एक्सटर्नली क्या इंप्लाई करेंगे, दूर से कोई बोल दे, अब दूर से सुन ले, कान में तो टुपी लगाई नहीं, ऐसा इफेक्ट करेगा आधे घंटे में, जो काम करने के लिए बहुत शोकग्रस्त सोच में पड़े थे उठकर खड़े। आत्मा को जागृत करने वाले ये संपदा, ये शक्ति है, ये शक्तिशाली ज्ञान है। तो आजकल शारीरिक स्तर पर हम खूब प्रगति कर लिए हैं, प्रगति क्या दुर्गति कर लिए हैं, लेकिन आत्मा के बारे में तो कोई ज्ञान ही नहीं। सचमुच संपूर्ण विश्व में अभी तक कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पर आत्मज्ञान के बारे में कुछ चर्चा होता, कोई सब्जेक्ट ही होता, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई फैकल्टी नहीं, एक ही यही है। क्योंकि भगवान जानते थे कि पूरे संसार में, विश्व ब्रह्मांड में दो ही मूल्य तत्व होता है, एक पदार्थ, एक आत्मा, और पदार्थ भी बनी बनाई, आत्मा ही मूल है, आत्मा पदार्थ को बनाता है, और आत्मा पदार्थ बिन करके संसार, दोनों के बिना काम बन ही नहीं सकता। जड़ और चेतन आत्मा के प्रमाण है, चेतन पदार्थ है जड़, जब तक चेतन जड़ मिलन नहीं होगा तो संसार चल ही नहीं सकता, नथिंग मिला कुछ नहीं हो सकता, और इसमें मूल जो ठोस आवश्यकता आत्मा, वो आत्मज्ञान है, वो भगवान के दिया हुआ, भगवान जिसको गीत रूप में गाए थे और भगवद गीता। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, इस भारतवर्ष में ज्यादा पुराना नहीं है, आज से ज्यादा 50-60 साल पहले एक आपके तरह एक व्यक्ति हो गए, जो बहुत कम समय में पूरे भारतवर्ष में महात्मा रूप में जाने गए, महात्मा गांधी करके, उन्होंने एक लहर थे विदेश में जाकर के लॉ पढ़ करके आए। आजकल हजारों जाते हैं लॉ पढ़ने के लिए, लॉ क्या और कुछ हाई स्टडी करने के लिए जाते हैं, लेकिन महात्मा कितने बने? दुरात्मा तो खूब बनते हैं, लेकिन क्यों? कि वही लॉ डिग्री करने के तो आए, कुछ एक्स्ट्रा कुछ बना नहीं, एक्स्ट्रा खान कुछ नहीं किए, भगवत गीता को साथ में लिए। इस प्रकार भगवत गीता को अपनाए, उसी से त्याग वैराग्य की शिक्षा लिए, इसी में निष्ठा का शिक्षा प्राप्त किए, सत्य की निष्ठा इतने लिए, उन्होंने हमेशा कहीं भी जाए गीता को साथ में लेकर जाते थे। उनका वचन था कि अगर किसी भी समय मुझे कोई बहुत शंका में आ जाता था, कहीं इस प्रकार दुविधा में पड़ता था, तो आंख बंद करके गीता को इसे खोलता था, जो सामने पेज आता था उसको पढ़ता था, उसमें समाधान मिलता था। ये महात्मा गांधी के वचन है, उनका कहना। तो आप लोग पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी मानते, आप करके देख सकते हैं, ये उनका ज्यादा पुराना है। वो कहते थे ये भगवद गीता के ऐसे अमूल्य दिव्य ग्रंथ है जिनका शुरुआत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द का जो उच्चारण है वह धर्म, और अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द है मम। मम मतलब मेरा, धर्म मतलब मेरा, बोलते मेरा धर्म, मम धर्म, ये क्या है विद इन ब्रैकेट पूरा भगवत गीता, भगवत गीता ही मनुष्य के धर्म। तो जो आपने आपको कहते हैं कि मैं भी धार्मिक हूं, मैं भी धर्म पालन करता हूं, क्योंकि धर्म ही एक ही चीज है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। मनुष्य मनुष्य कहलाएगा जब धर्म आचरण करता है, नहीं तो पशु है। तो जो आपने आपको मनुष्य कहलाने के लिए चाहता है, धर्माचारी कहता है कि धर्म आचरण मैं भी करता हूं, तो मनुष्य का धर्म तो भगवद गीता। जब तक मनुष्य रहेगा तब तक भगवद गीता रहेगा, और तब तक भगवद गीता का आवश्यकता पड़ेगा तब तक भगवद गीता का इस प्रकार के प्रचार प्रसार का भी आवश्यकता पड़ेगा। तो आप लोग जितने भगवद गीता का प्रचार प्रसार किए हैं, आप लोग को सचमुच अपने आप को गर्वित होना चाहिए कि इतने बड़े महान उपदेय, इतने बड़े शक्तिशाली ज्ञान के ग्रंथ, जो आजकल के पतित दुर्गतिग्रस्त समाज और जीवात्मा को तथा कथित आधुनिक समाज में अति आवश्यकता है, भले उनको समझे या नहीं समझे, लेकिन उनका आवश्यकता है। कोई बीमारी व्यक्ति, उसको पता नहीं दवाई क्या, बीमार तो है, दुख भोग रहा है, लेकिन दवाई के बारे में पता नहीं। डॉक्टर को पता है क्या दवाई देने से ठीक हो जाएगा, डॉक्टर जाकर उसको दवाई देता है तभी नहीं खाता, खाने का विधि बता करके और देता है, इच्छा नहीं, अरे कड़वा लगता है तभी नहीं खाएगा। लेकिन अगर खाएगा दवाई, किसी प्रकार से कोई उनको खिला दे, तो उसका वेदना उपशम होगा, जो उनका बीमार ठीक हो जाए। तो आजकल के समाज के इस प्रकार के जो स्थिति है, तथा कथित आधुनिककरण से जो परिस्थिति आज उत्पन्न हो चुका है, और हम जो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में आकर के अपने आत्मा को जिस तरह से भूल चुके हैं, इसी स्तर में आम के दवाई का हाइडोज का आवश्यकता। तो आप लोग जो इस दवाई को लेकर के न चाहते हुए, बीमारी व्यक्ति चाहता ही नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, अरे भाई ले लो, फिर भी एक दवाई को देकर आए, तो दवाई देने पर भी नहीं खाते। हम पता, हम ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं भारतवर्ष में कि भगवत गीता तो लिए, कोई फोर्स करके दे दिया, पता नहीं कैसे ले लिए, दूसरे साल के दिसंबर आ गए, उनके बेटा बैठा था दुकान में, फिर जाकर पहुंचे ले लो। उनके पिताजी बोले बेटा पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, आज इट इज, आज इट इज, आज इट इज, अभी तक पॉलिथीन खुला नहीं, जैसा ही लिया था ऐसा ही, जैसा ही कैसा, अभी तक जो प्लास्टिक कवर था प्लास्टिक कवर भी नहीं खुला, ऐसे ही रखा हुआ है, उल्टी उसके ऊपर एक और कपड़ा चढ़ा दिया, ऐसे रखा। तो भारतवर्ष में तो ऐसे सम्मान करते हैं दवाई को, आज इट इज करते हैं, बिल्कुल खोलते भी नहीं, ऊपर से और एक कवर चढ़ा के रखते हैं, लेकिन भले दो चार पीढ़ी के बाद में अगर वो कोई खोले उसको, तभी जो प्रभाव पड़ेगा वो सात पीढ़ी को उधार कर सकता है। तो इसलिए भले हमको ये पता नहीं कि उसके प्रभाव क्या हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते प्रभाव क्या हो सकता है। आज इतने मॉडर्नाइजेशन के बावजूद जितने आधुनिकीकरण हम देखते हैं, जितने आधुनिक युवक युवती हम देखते हैं, ये जो इस्कॉन संस्था है ये कोई पुराना नहीं, हजारों हजारों साल से पुराने मठवाड़ी है, बड़े बड़े संस्था, बड़े बड़े संप्रदाय हैं। ये इंटरनेशनल सोसाइटी अभी तो 50 साल पूरा हुआ, ले लेकर के 50 ही पूरा हुआ, कोई ज्यादा पुराना नहीं है। तो उसमें जो ज्ञान है, भले कोई कहे ये तो इंटरनेशनल है, वो तो सभी कुछ इंपोर्टेड है, यहाँ के डिवोटी भी इंपोर्टेड है, यहाँ के सब कुछ इंपोर्टेड है। सचमुच आजकल के आधुनिक समाज में पूरे भारतवर्ष के सभी जनता इंपोर्ट आइटम के लिए इतने पागल है, एवरीथिंग इंपोर्टेड चाहिए। हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य भक्ति बदान स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने भारतवर्ष में अथक प्रयास किए थे इस संस्था को फैलाने के लिए, करने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हुए। क्यों? क्योंकि लोग इंपोर्ट के चक्कर में थे, हर चीज इंपोर्टेड चाहिए, एवरीथिंग, कोई पेन भी हो, एनीथिंग, लोन करके इंपोर्टेड आइटम ले लो, इंपोर्टेड क्या समझ, मेड इन यूएसए, अरे अपने आप को गर्व मानते, हर चीज मेड इन यूएसए, जैकेट स्वेटर हैंड एवरीथिंग मेड इन यूएसए। तो भगवान जी की ये चतुरता है, उन्होंने वही भगवद गीता के ज्ञान जो अति प्राचीन ज्ञान भारतवर्ष का था, उसी को साथ में ले गए मेड इन यूएसए, उसमें स्टाम्प लगाए, वही संस्था को न्यूयॉर्क सिटी में रजिस्टर्ड करवाए इंटरनेशनल सोसाइटी के द्वारा, अब बना करके नया पैकेट करके, नया पैकेट में माल तो ही है, पैकेट वही है और स्टाम्प लगा मेड इन यूएस न्यूयॉर्क सिटी का, और लेकर के आए। आजकल जितने भारत के नौजवान अभी आए हो प्रभु जी दिल्ली आईआईटी वाले, उनका भी हाल देखिए, बाल उड़ गया, ड्रेस उड़ गया, कलर भी चेंज हो, किस प्रभाव से, और कई पूरे विश्व में यही गीता के करामत, उसी को इंपोर्ट करके लाया गया, आधुनिकीकरण करके लाया है, तो वही बात, सेम ओल्ड थिंग इन न्यू बॉटल, न्यू पैकेज में लाए, मंत्र वही हरे कृष्ण मंत्र है, ज्ञान वही भगवत गीता का है, लेकिन मेड इन यूएसए स्टाम्प लगा करके लाए आप भारतीय लोग पागल। हाँ, इंपोर्टेड एक्ट, ये इंपोर्टेड रिलीजन, इंपोर्टेड मंत्र, हर मंत्र इंपोर्टेड है ही नहीं, वही वही बाद में पता चलता है जब अब चैन चांद होकर के तिलक कंठी कर डालते हैं, अरे ये तो पुराना हमारे पूर्वजों ने इसी को गाए थे, वही थे, वही श्लोक, वही मंत्र, वही उच्चारण, वही व्यवहार, वही सब कुछ है, लेकिन जब उनको मेडिंग यूएसए करके लाया गया, इंपोर्टेड करके लाया गया, तब उसका प्रभाव कुछ और था। तो इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ में वही इंपोर्टेड ज्ञान, वही भगवत गीता आज इट इज, जो इंपोर्टेड भगवत गीता है, भले हम उसको इंपोर्टेड करके लेते हैं, लेकिन है तो वही कृष्ण अर्जुन संवाद, वो सभी युग के लिए, सभी समय के लिए, सभी प्रकार के लोगों के लिए, सभी परिस्थिति में उपादेय है, आवश्यकता है। मनुष्य जीवन के लिए अति आवश्यक है। भगवान गीता में कहते हैं, मत्त परतरम नाम्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। बोलते हैं ज्ञान मैंने दिया, ये जान लो कि मैं हूं इसलिए संसार चलता, मैं हूं इसलिए आप और हम बैठे हैं, मैं हूं इसलिए मैं बोल पाता हूं, मैं हूं इसलिए आप सुन पाते हैं। अगर वो ना होते तो भी कुछ नहीं हो पाता। इसलिए जैसे एक माला में हमको केवल मोती दिखता है, लेकिन मोती के इस प्रकार के सीरियली रहने का पीछे जो रहस्य है, एक धागा होता, अगर ये धागा ना होता, धागा टूट जाता, मोती सब बिखर जाता, कोई अपने स्थिति में नहीं रह पाता। ठीक इसी प्रकार एक कृष्ण और एक कृष्ण के एक ये ज्ञान अगर ना होता, गीता ना होता, तब आज संसार बिखर गया होता, हम लोग ना होते सब बिखर गए होते। सूत्र हरे कृष्ण। आप सबको विशेष विशेष धन्यवाद, आप सब इतने देर तक अब सुने, आशा करता हूं कुछ तो समझ में आया। हरे कृष्ण। ओ क्वेश्चन हम सर, ओके, एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न है किसका?
व्हाट इज दिस टाइम? टाइम तो इसलिए मैं जा रहा था मना कर, मैं तो जा रहा था मना कर,
नहीं कभी जाना नहीं है, एक्चुअली सर्टिफिकेट स्टूडेंट।
कोई प्रश्न है किसका? No question. Yes.
तो मुझे दो लाइन है, निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम।
हाँ जी।
अगर आप ये कहें तो सभी आनंद में हो जाएंगे, पूरा वातावरण कृष्ण में हो जाएगा। लेकिन आप अपनी वाणी में कहिए प्लीज। अपनी वाणी में कहिए।
हाँ, जब कहने का समय आएगा तो कहेंगे। और कोई
किसी और को कोई प्रश्न? सीट पर अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं महाराज। थैंक यू वेरी मच। तो हम महाराज का धन्यवाद करेंगे। एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर हम खड़े होकर महाराज का धन्यवाद कर सके तो बहुत अच्छा होगा। और दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। अभी हम महाराज से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बीच सुंदर गोपाल प्रभु जी आ चुके हैं, तो हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे प्रभु जी का। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी IWF के डायरेक्टर हैं।